आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। झारखंड में 43 विधानसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा। मतदान सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों की 200 से अधिक कंपनियां तैनात की गई हैं। दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र विधानसभा का प्रचार भी चरम पर है। विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र में तीव्र विकास के लिए महायुति सरकार की सराहना की। चंद्रपुर जिले के चिमूर में एक चुनावी रैली में उन्होंने कहा कि ये महायुति सरकार के प्रयासों का परिणाम है कि महाराष्ट्र पिछले 2 वर्षों में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाला राज्य बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पर आगामी झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटों के लिए एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय में विभाजनकारी और रूढ़िवादी ताकतों के साथ साजिश रचने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाया कि वे संकीर्ण मानसिकता वाले और अल्पसंख्यकों के उत्थान के विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि मुख्य विपक्षी दल अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय एकता का विरोध करने वाले समूहों के साथ गठबंधन कर रहा है। असम में 5 विधानसभा सीटों पर कल होने वाले उपचुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राज्य में 9 लाख से अधिक मतदाता 34 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे, जिसके लिए 1078 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। कर्नाटक के चन्नापटना, शिगगांव और संदूर विधानसभा क्षेत्र के लिए कल होने वाले उपचुनावों के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चन्नापटना सीट पर केंद्रीय मंत्री और जनता दल एस के वरिष्ठ नेता एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी और कांग्रेस उम्मीदवार सीपी योगेश्वर के बीच कांटे की टक्कर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज उपस्थित थे। इस दौरान वर्ष 2022-2023 का कालिदास अलंकरण सम्मान प्रदान किया गया। 4 विधाओं में कुल 8 विद्वानों को इस गौरव से सम्मानित किया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि महाकवि कालिदास की रचनाओं में मानवीय भावनाओं और प्रकृति के बीच अटूट रिश्ते तथा प्रेम की पवित्रता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। उन्होंने कहा कि महान कवि ने पर्यावरण संरक्षण जैसे ज्वलंत मुद्दे के बारे में भी लिखा है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। आज ही के दिन 1947 में महात्मा गांधी का एकमात्र सजीव प्रसारण आकाशवाणी से हुआ था। ये दिवस पूरे देश में सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने और शिक्षित करने में आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताता है। इस अवसर पर प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने राष्ट्र के प्रति महात्मा गांधी की प्रतिबद्धता के बारे में बताया। इस अवसर पर नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान आकाशवाणी की महानिदेशक डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन के महानिदेशक कंचन प्रसाद और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में अच्छा प्रदर्शन करते हुए वार्षिक आधार पर 11% की विकास दर अर्जित की है। इस अवधि में बैंकों ने कुल 236 लाख करोड़ रुपए का कारोबार किया। वित्त मंत्रालय के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंकज आडवाणी को विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने अपने संदेश में उनके समर्पण, जुनून और प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सफलता आने वाले एथलीटों को प्रेरित करती रहेगी। बिहार के राजगीर में महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने लगातार अपना दूसरा मैच जीत लिया है। उसने आज 3 बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया को 3-2 से पराजित किया। इससे पहले कल भारत ने अपने पहले मुकाबले में मलेशिया को 4-0 से शिकस्त दी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।